بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ہندوستان میں لوک سبھا الیکشن یا عام انتخابات. اس موضوع پر گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. جہاں ناظرین، آپ جانتے ہوں گے کہ 7 اپریل سے شروع ہو کر 12 مئی تک مختلف مراحل میں انجام پانے والی لوک سبھا کے انتخابات کی پولنگ یا ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے. متعدد مراحل انجام پا چکے ہیں اور متعدد مراحل پولنگ کے ابھی باقی ہیں، لیکن اس دوران ہندوستان میں اس وقت سیاسی درجہ حرارت اپنے بام عروج پر ہے اور مختلف سیاسی پارٹیاں ہر طرح کی کوشش کر رہی ہیں کہ جیسے بھی انہیں زیادہ سے زیادہ سیٹیں ملیں، زیادہ سے زیادہ ووٹ ملیں. تمام تر سیاسی، چاہے وہ چھوٹی جماعتیں ہوں یا بڑی جماعتیں ہوں، مرکزی سطح کی ہوں، علاقائی سطح کی ہوں یا انتہائی نچلی سطح کی جماعتیں ہوں، سب کی کوشش یہ ہے کہ جیسے بھی ہو انہیں کچھ نہ کچھ نمائندگی، کچھ نہ کچھ سیٹ، اور جو مرکزی جماعتیں ان کی کوشش ہے کہ پارلیمنٹ میں واضح اکثریت انہیں حاصل ہو سکے. 10 سال تک برسر اقتدار رہنے کے بعد کانگریس پارٹی کی خواہش یہ ہے کہ وہ تیسری اننگ بھی شروع کرے، لیکن اس کے مد مقابل بھارتیہ جنتا پارٹی کی کوشش ہے کہ اس بار ملک میں جیسے بھی ہو چینج آئے، تبدیلی آئے اور اس کی حکومت بنے. لیکن اس درمیان ایک اور پارٹی نئی جو سامنے ابھر کر آئی ہے، جس کو عام آدمی پارٹی کہہ رہے ہیں، اسے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید ان دونوں بڑی جماعتوں کے لیے ایک چیلنج بن کر ابھری ہو اور ان انتخابات میں شاید وہ کوئی اپنا فیصلہ کن رول ادا کرے. اگرچہ بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ایسی پوزیشن میں وہ نہیں کہ 2/3 اکثریت یا واضح اکثریت حاصل کر لے، لیکن شاید ایک کنگ میکر پارٹی بن کر وہ ابھر سکتی ہے، ایسا بہت سے لوگوں کا خیال ہے. لیکن اس دوران اتر پردیش ہو یا بہار ہو یا جو دیگر ریاستیں ہیں جنوب کی، وہاں جو علاقائی جماعتیں ہیں یا بنگال میں جو علاقائی جماعت ہے، اس کی اہمیت اور اس کی پوزیشن کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس دوران جو سب سے اہم بات اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے کہ دو بڑی جماعتیں، بھارتی جنتا پارٹی اور کانگریس، ایک دوسرے پر الزامات اور جواب الزامات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور کبھی کانگریس بی جے پی پر نشانہ سادھنے کی کوشش کرتی ہے تو دوسری طرف سے بھارتی جنتا پارٹی بھی کسی بھی عنوان سے کانگریس پر حملہ کرنے سے پیچھے نہیں ہے. بہرحال سیاسی دنگل جاری ہے اور نتیجہ تو 16 مئی کو ہی آئے گا. اس وقت پتہ چلے گا کہ نئی دہلی میں حکومت کس کی بنے گی اور وزیر اعظم کا تاج کس کے سر پر ہوگا. یہاں پر ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر اپنے معزز مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
ہندوستان کی تاریخ میں طویل ترین انتخابات کے کل 9 مرحلوں میں سے 4 مرحلے مکمل ہو چکے ہیں، جس کے تحت ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں 110 سیٹوں پر ووٹنگ ہو چکی ہے اور ان علاقوں میں امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ بیلٹ باکسوں میں بند ہو چکا ہے. اگلے 5 مراحل کے انتخابات بالترتیب 17, 24, 30 اپریل اور 7 اور 12 مئی کو منعقد ہوں گے، جس کے دوران باقی بچی سیٹوں پر فیصلہ ہوگا. تاہم اب تک ووٹنگ کی شرح کافی زیادہ رہی ہے اور کئی علاقوں میں ووٹنگ کی شرح اتنی زیادہ رہی کہ کئی برسوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. ہندوستان میں میڈیا اور اس کے ذریعے کیے گئے سروے میں بی جے پی کو فاتح قرار دیا جا رہا ہے اور ہندوستانی میڈیا بی جے پی کے اس دعوے کی عملاً تصدیق کر رہا ہے کہ ہندوستان میں اس بار مودی اور بی جے پی کی لہر ہے. حالانکہ بی جے پی ابھی اس نتیجے پر نہیں پہنچ پائی ہے کہ اس لہر کو بی جے پی کی لہر کہا جائے یا نریندر مودی کی لہر قرار دی جائے، جو اس پارٹی کی جانب سے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے منتخب کیے گئے ہیں. بی جے پی کے علاوہ دوسری پارٹیوں کے موقف سے قطع نظر ایسے تجزیہ نگاروں کی بھی بڑی تعداد ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی یا بی جے پی کی لہر مصنوعی ہے اور اس کے پیچھے میڈیا کا ہاتھ ہے، جو کھل کر بی جے پی کی طرف سے پی ایم امیدوار نریندر مودی کے لیے کام کر رہا ہے. پارٹیوں کی سطح پر اگر دیکھا جائے تو کانگریس کے علاوہ اروند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی نے بھی سلسلے میں کھل کر میڈیا پر تنقید کی ہے، اور حالیہ دنوں میں انڈیا ٹی وی پر نریندر مودی کے انٹرویو کے بعد اس ٹی وی چینل کے سینئر صحافی قمر وحید نقوی کے استعفے سے اس معاملے کو اور زیادہ شدت کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے. قمر وحید نقوی نے یہ کہتے ہوئے انڈیا ٹی وی سے استعفیٰ دے دیا تھا کہ اس ٹی وی پر نشر ہونے والا نریندر مودی کا انٹرویو پہلے سے فکسڈ تھا. ہندوستان کے انتخابات میں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی مختلف پارٹیوں کے رہنما ایک دوسرے پر الزامات عائد کرنے میں پیش پیش ہیں، اور کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر عائد الزامات کا باقاعدہ جواب دے۔ بی جے پی کی کارکردگی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس بار مرکز میں حکومت بنانے کے پورے عزم کے ساتھ میدان میں اتری ہے، اور اس سلسلے میں وہ مسلمانوں کو بھی اپنے ہمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جن کا ووٹ بہت سے علاقوں میں فیصلہ کن ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں سے معافی مانگنے اور پھر اس معافی کی مختلف تاویل کرنے والی بی جے پی کے سربراہ راج ناتھ سنگھ نے پیر کے روز لکھنؤ میں کچھ علماء سے ملاقات بھی کی۔ اس لحاظ سے سب کچھ پہلے جیسا ہی ہے، مگر اروند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی نے اس بار کے الیکشن کو ماضی سے تھوڑا مختلف ضرور کر دیا ہے، اور اب ہندوستانی ووٹروں کے پاس بی جے پی اور کانگریس کے علاوہ بھی ایک متبادل ہے۔ عام آدمی پارٹی سے عوام کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے اس بارے میں تو کچھ یقین نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ پچھلے کچھ انتخابات میں ایک دوسرے سے لڑنے والی بی جے پی اور کانگریس کے سامنے اب ایک ایسا حریف بھی ہے جس کی طاقت کا صحیح اندازہ کسی کو بھی نہیں ہے۔
ناظرین، ہندوستان کے عام انتخابات یا لوک سبھا چناؤ اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ چلتے ہیں سیدھے لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں اس وقت ممتاز تجزیہ نگار اور خاص طور پر بر صغیر کے امور کے ماہر ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ اندرابی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ۔
جی شکریہ اندرابی صاحب، اب تک کے جو چار مرحلے کے انتخابات یا پولنگ ہو چکی ہے اور ابھی جو پانچ مرحلے باقی ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب تک آپ کی نگاہ یقیناً ہوگی حالات پر اور صورتحال پر، کیسا دیکھ رہے ہیں آپ انتخابی عمل کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک ابھی جو آج تک جو ووٹنگ ہوئی ہے اس میں اکثر یہ اندازہ لگتا تھا جو جس کو ایگزٹ پول کہا جاتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے ایگزٹ پولز کو اس بار ممنوع قرار دیا ہے، لہذا ایگزٹ پولز بھی سامنے نہیں آئے ہیں۔ لیکن جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں پہلے بتایا کہ میڈیا جو وہاں کی پکچر دنیا کو دکھا رہا ہے اس میں واضح طور پر ایک بی جے پی کی طرف بائس ہے، یعنی کوئی بھی دیکھنے والا یا حالات کو سمجھنے والا یہ سوچے گا کہ شاید بی جے پی جو ہے ایک ویو پر ہے اور بی جے پی کی برتری ہے۔ لیکن یہ بات اچھی طرح کہی جا سکتی ہے کہ بی جے پی کی کوئی ویو نہیں ہے وہاں، مودی کی کوئی ویو نہیں ہے، یہ ایک میڈیا جنریٹڈ اور جو اوپینین پولز جو بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو اوپینین پولز کی طرف سے ایک رائے، ایک فضا جنریٹ کی جا رہی ہے، لیکن کوئی وہاں پہ ویو نہیں ہے۔ اب جہاں تک جنوب کا معاملہ ہے، ساؤتھ انڈیا کا، تو ساؤتھ انڈیا میں اب دیکھیں کیرلا میں ووٹنگ ہوئی تو وہاں تو بی جے پی کا کوئی وہاں کے، یعنی وہاں بی جے پی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہاں کیرلا میں اور اوور آل ساؤتھ انڈیا میں بہت لٹریسی بہت زیادہ ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں تو اور بہت غیر متاثر ہیں وہاں۔ وہاں دیکھیے نا، میں ضمناً یہ بات کہوں کہ ہم جب انڈیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں کل ہی ایک ٹی وی چینل پہ بات کر رہا تھا اس تعلق سے، تو انڈیا کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی ایک مشکل معاملہ ہے، اس لیے کہ انڈیا اصل میں ایک بہت بڑا خطہ ہے جہاں کئی نسلیں، کئی زبانیں، کئی قومیتیں، تو اور ڈفرینٹ وہاں کی ریئلٹیز ہیں۔ اب جیسے اب یہ جو ساؤتھ انڈیا ہے اس کا معاملہ ہی کچھ اور ہے، وہاں کے لوگوں کے ایٹیٹیوڈس، آؤٹ لک، ان کا وہ سارا کچھ اس سے ڈفرینٹ ہے جو آپ اتر پردیش میں پائیں گے، یعنی نارتھ انڈیا میں پائیں گے۔ تو لہذا ساؤتھ انڈیا میں تو بہرحال بی جے پی کا اتنا وہ نہیں چلے گا، وہاں تو مدراس میں تو بہرحال ان کی لوکل پارٹیز ہیں، ڈی ایم کے، آل انڈیا ڈی ایم کے، اور آندھرا پردیش کا بھی اب وہ وہاں بھی اب ایک ڈویژن ہوگا، لیکن وہاں بھی ان کی اپنی لوکل پارٹیز ہیں۔ تو اس طرح سے ابھی تک جو تاثر دیا جا رہا ہے، میں मुझे तो नहीं लगता कि ये बीजेपी की कोई वेव है वहाँ पर, या बीजेपी जो है बहुत ज़्यादा अक्सरियत के साथ सामने आएगी। ऐसा ज़रूर लगता है कि बीजेपी अब इस वक्त की जो उसकी टैली है, इस वक्त उसकी जो सीटें हैं उन पे वो ज़रा उसको उसमें इजाफा करेगी, उनसे ज़्यादा सीटें लेकर आएगी। लेकिन बहरहाल उसको दारमदार करना पड़ेगा कोएलिशंस पर और उन दूसरी छोटी छोटी पार्टियों पर जो उसके साथ इलेक्शन के बाद जो उसके साथ हुकूमत बनाने पर रजामंद होंगी। अब उस पर भी सवालिया निशान है कि मोदी के होते हुए ऑलरेडी उनके कई अलाइज बाहर आ गए हैं, तो लिहाजा उस पर भी मालूम नहीं कि कौन अब उनके साथ आएंगे और कौन नहीं आएंगे। लेकिन बीजेपी की वेव का जो ये तासुर है ये सही तासुर नहीं है। और आखिरी बात जो मैं आपसे कहना
जी
चाहता हूँ वो ये कि जो पहले भी मैंने यहाँ आपके इस प्रोग्राम में कही है कि आम आदमी पार्टी से एक फर्क वाका हुआ है, वो एक फैक्टर बनकर कम से कम इन इलेक्शंस में आई है, यानी उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो क्या सीटें लेगी क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन वो एक ऐसी हकीकत बनकर सामने आई है कि जिसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और अभी तक ये देखने में आया है कि कांग्रेस से ज़्यादा, जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है, कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी आम आदमी पार्टी से नाराज़ है, यानी वो बहुत इससे फ्रस्ट्रेट हुए हैं। तो लगता है कि उसने जैसे बीजेपी को कांग्रेस से ज़्यादा शायद चोट पहुँचाई हो, तो ऐसा बीजेपी के रवैये से ऐसा जाहिर होता है।
जी
तो ये मेरी कुछ इब्तदाई ऑब्जर्वेशन है।
जी अंद्राबी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फ़र्ज़ करें जैसा कि भी आपने कहा कि मुमकिन है कि भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी को इस बार कुछ ज़्यादा वोट मिले, तो इसकी वजह ये हो सकती है कि 10 साल हुकूमत करने के बाद कांग्रेस से लोग अब मायूस हो गए हैं, या मुल्क में कुछ चेंज या तब्दीली चाहते हैं, या वाकई मोदी की पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसकी बुनियाद पर उन्हें यानी बीजेपी वालों को कुछ ज़्यादा वोट मिल जाए।
नहीं, उसमें एक दो वजूहात है। एक तो ये जो आप फरमा रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं कि कांग्रेस अब इस काफ़ी वक्त से हुकूमत कर रही है, लोग कुछ और चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि कोई तब्दीली हो, तो तब्दीली के साथ हमेशा बेहतरी को वाबस्ता किया जाता है कि तब्दीली हो तो शायद हालात बेहतर हों। तो एक तो वो फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर इंडिया में और हर जगह वैसे जमहूरियत में और इलेक्शंस में पैसे का बहुत अमल दखल होता है। अब अमेरिका आप देखिए, उससे वहाँ पैसे का जो अमल दखल है इलेक्शन में वो तो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी तरह इंडिया में काफ़ी वक्त से, अभी पिछले 4-5 साल से ये बात देखने में आई कि मोदी को इंडिया का जो बड़ा सरमायादार तबका है, जैसे अंबानीज हैं, टाटाज वगैरह, इनकी ताईद हासिल है, उनको मोदी को उन तमाम लोगों की हिमायत हासिल है। इसीलिए बीजेपी की जो कंपेन इस वक्त चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा फंड्स हैं, बहुत ज़्यादा, और लोग पूछ रहे हैं कि ये फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी ने इंकशाफ किया था कि मुकेश अंबानी ने अपना जहाज मोदी के लिए अवेलेबल रखा है, जिसमें मोदी इधर उधर जो है वो करता है। तो लिहाजा बिग मनी जो है इंडिया की, उसमें उसका भी खास अमल दखल है, और वो हमें समझना चाहिए कि इंडिया की जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं, जैसे बड़ी चैनल्स हैं वहाँ पर, उन पर बहुत ज़्यादा असर रसूख है इंडिया का जो कॉरपोरेट सेक्टर है। तो इसीलिए ये नेक्सस जो है ये बीजेपी को बहुत बड़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, और इसका भी दखल होगा इसमें कि अगर बीजेपी अपनी टैली को इस वक्त इम्प्रूव करें। तो ये कुछ इसमें कई फैक्टर्स हैं।
जी बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अब चलते हैं इस वक्त दिल्ली स्टूडियो, जहाँ पर मौजूद है हिंदुस्तान के सीनियर और सरकर्दा सहाफ़ी और तज़ज़िया निगार ज़फ़र आगा साहब। अस्सलामु अलैकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम जनाब।
ज़फ़र आगा साहब, भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को तो यह है कि अब की बार मोदी सरकार यानी लोगों से तब्दीली की अपील कर रही है, दरख्वास्त कर रही है, लेकिन 10 साल तक हुकूमत करने के बाद कांग्रेस पार्टी के पास आवाम के सामने कहने के लिए क्या है? उसने 10 साल में जो, जैसा कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी या उसके जो दीगर लीडरान, वो कह रहे हैं कि हमने ये किया तरक्की के लिए, ये किया, ये प्रोजेक्ट किया वगैरह वगैरह, तो आप क्या समझते हैं जो कुछ 10 साल में कांग्रेस ने किया है आवाम के सामने पेश करने के लिए कांग्रेस पास, वो सब काफ़ी होगा?
देखिए, कांग्रेस के पास कहने को बहुत कुछ था और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यूपीए हुकूमत का जो दूसरा दौर रहा, बल्कि अगर ये कहा जाए कि 10 सालों में मिला के यूपीए हुकूमत ने आवाम के लिए बहुत बहुत कुछ किया, बहुत सारी स्कीमें आईं, बहुत गरीबों के लिए मसलन मनरेगा का प्रोग्राम बड़ा कामयाब प्रोग्राम रहा जिसकी बिना पर वो पिछली बार जीते। इस बार इसके अलावा अकलियतों के तनाजर में ख़ास तौर से दो बातें जो देखने को आईं 10 साल के अंदर कांग्रेस के हुकूमत के दौरान, यूपीए हुकूमत के दौरान, वो ये कि रॉयट्स में सिवाय एक मुजफ्फरनगर के बड़े इलाका के रॉयट के, जो जहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी, बड़े रॉयट्स उमूमन थमे रहे, फसादात की कमनल फसादात की में बहुत रोकथाम लगी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मुसलमान में बढ़ा, बिलखसूस मुसलमान में, मुस्लिम अकलियत में बहुत बढ़ा। दूसरी चीज़, पहली बार मुसलमानों के लिए इकनॉमिक एजेंडा और इकनॉमिक प्रोग्राम बना और उसको एक इकनॉमिक शेयर दिया गया, वो बहुत कामयाबी से लोगों तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन एक एक चीज़, एक नई हिंदुस्तान की माशी तरक्की में मुसलमान के अपना और अकलियतों का अपना एक शेयर बना, ये एक बिल्कुल नई शुरुआत थी। तो बहुत सारी बातें थी जो कांग्रेस कह सकती थी, कर सकती थी, लेकिन दो वह बातें हुई। एक, करप्शन का गोगा, मीडिया का कांग्रेस के खिलाफ दबाव, फिर कांग्रेस में ख़ुद एक अंदर लीडरशिप को के चेंज, राहुल गांधी के आने से एक नई शुरुआत के पैदा होने से, ओल्ड गार्ड में जो 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 सीनियर लोग थे उनमें कन्फ्यूजन का पैदा होना, उनमें उनमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा हुआ, ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड। तो कांग्रेस ख़ासतौर से मीडिया का दबाव, मिडिल क्लास का दबाव, करप्शन के बारे में जो शोर हुए और कुछ स्कैम्स हुए जो कांग्रेस के कम और उसके इत्तेहादियों के ज़्यादा थे, उसने कांग्रेस पर कुछ ऐसा दबाव और प्रेशर बना दिया कि कांग्रेस कुछ, मुझे लगता है कि नर्वस और कंफ्यूज सी दिखाई देने लगी। वरना ऐसी बात नहीं थी कि चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होते, बहुत परेशान कुन होते, लेकिन लीडरशिप इस ये जो दबाव बनाया गया बहुत ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक तरीके से पिछले 2-3 सालों में, एक तो हिंदुस्तान का कॉरपोरेट वर्ल्ड मोदी के साथ चला गया, बड़ा सरमायादार जैसा भी आपके वो फरमा रहे थे, फिर मीडिया बिल्कुल कांग्रेस का मुखालिफ हो गया, मिडिल क्लास में करप्शन के नाम के ऊपर कांग्रेस के खिलाफ एक लहर पैदा की गई, और जो थिंकिंग तबका था वो ख़ास तौर से कांग्रेस के खिलाफ हुआ, और इनके जवाब देने में कांग्रेस कन्फ्यूज रही। कांग्रेस बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत वाजे तौर पर इन चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकी, जिसकी वजह से अब वो चुनाव में जब से शुरू हुए हैं कांग्रेस लड़खड़ाती नज़र आ रही है।
बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नई दिल्ली से ही हिंदुस्तान के सरकर्दा सहाफ़ी तज़ज़िया निगार सौरभ कुमार शाही साहब, उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं जनाब। जी शाही साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा कि अभी जफर आगा साहब फरमा रहे थे कि लोकसभा चुनाव में इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कारपोरेटर्स, मीडिया और मिडिल क्लास जो है वो एक तरह से बीजेपी की तरफ है, तो कारपोरेटर्स या मीडिया क्यों कांग्रेस का मुखालिफ हो गया आपके ख्याल में?
देखिए, एक बहुत ही करीब से एक कोई भी पार्टी अगर कोई सोशल मूवमेंट से रिलेटेड या कोई इस तरह के सोशल इनिशिएटिव लेती है तो उसको अपोज करो। आप देखें, जो 10 साल का वक्त रहा है कांग्रेस का, उस चीजें जो अच्छी उन्होंने की है, जिसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है नरेगा, जिसका आपको पता है नेशनल रोजगार गारंटी स्कीम जो है, और इस तरह की और भी कई स्कीम्स हैं जो माइनॉरिटीज के लिए भी स्टार्ट की, जिसकी RTI जैसी चीजें हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं होती। ये इस तरह की चीजें जो होती है वो जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जो बड़े, उनको डराती हैं, उनको ये लगता लगता है कि उनको जमीन चाहिए सस्ते दामों में, उनको चीजें चाहिए बिल्कुल कौड़ी के भाव में, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि इस की कोई जो माइनॉरिटीज ग्रुप हों या दलित हों या डाउनट्रोडन हो उनके साथ कुछ भलाई हो सके। तो एक और यही एंग्विश जो है ये मिडिल क्लास में भी होता है। आप देखें इंडियन मिडिल क्लास जो है वो मैं बातों को चबाता नहीं, इंडियन मिडिल क्लास जो है वो बहुत ही कॉमनल माइंडसेट की मिडिल क्लास है और पूरी दुनिया में ऐसे मिडिल क्लास राइट विंग होती है, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही कॉमनल माइंडसेट जो एंटी आप कह सकते हैं दलित, एंटी ओबीसी, एंटी मुस्लिम, ये फीलिंग्स इंडियन मिडिल क्लास में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। कि ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि इनका जो एक नेचुरल झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ होता है। मैं ये भी कहता चलूं कि ऐसा भी हुआ है कि पास्ट में इन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, पर उसका ये मतलब नहीं हो गया कि इनकी जो एंटी और एंटी ओबीसी या दलित जो पॉलिसी है वो कुछ छुप जाती है। ये हमेशा से वही है, जब इनको जो सूट करता है उसको ये करते हैं। अभी इनको एक लग रहा है कि अल्टरनेटिव मुझे दिख रहा है जो कि कांग्रेस को हरा सकती है, तो ये चारों तरफ से लामबंद होके कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इसको हराया जाए। तो ये एक बात। दूसरी बात कॉर्पोरेट हाउसेस की जब आप करते हैं, देखिए गुजरात मॉडल जो बार बार यहाँ कहा जाता है वो क्या मॉडल है? वो मॉडल ये है कि आप 20,000 रुपए पर गज की जमीन जो है वो 2 रुपए पर गज की कॉर्पोरेट हाउसेस को दे दें, औने पौने भाव में उनको दीजिए और वहां पर लेबर यूनियन को या किसान मजदूर यूनियन को इतना कमजोर कर दीजिए कि वो आपका विरोध ही ना कर सके। तो उससे ये होता है कि जो ये कॉर्पोरेट हाउस है वो कहते हैं कि बड़ा जल्दी हमारा काम हो गया, जल्दी काम हो जाएगा क्योंकि तुमको तो औने पौने दाम में तो जमीन मिली है, तुम्हारा कोई विरोध करने वाला है नहीं क्योंकि ट्रेड यूनियंस को जो है वहां दबा दिया गया है। तो वो ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ये चीज हो, हर जगह उनको औने पौने दामों में बिजली मिले, औने पौने दामों में जमीन मिले, हर जगह जो है लेबर यूनियन को दबाया जाए और जिस तरह से जो भी राइट तो लेबर से उनको छीन लिया जाए। देखें बार बार ये हमेशा कहते रहते हैं राइट को चेंज करने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें उन्होंने गुजरात में की है और वो चाहते हैं कॉर्पोरेट हाउसेज इसको ये रेप्लीकेट करें पूरे हिंदुस्तान में। तो आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें उनका इंटरेस्ट है जो साफ झलकता है।
जी बहुत शुक्रिया, आप टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। जफर आगा, एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता हूँ। मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसा कि अभी आप भी फरमा रहे थे और सौरभ कुमार शाही साहब ने भी कहा कि कांग्रेस ने बहुत सारी स्कीमें दी, खासतौर पर दलितों के लिए, अकलियतों के लिए मनरेगा और इस तरह की दीगर स्कीमें, और सोनिया गांधी ने भी अपने कल के खिताब में इसकी तरफ इशारा किया। एक तस्वीर ये भी है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो इस तरह से हमायत की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, लहर की जो बात की जा रही है, ये मसनूई है। तो क्या आप नहीं समझते कि जो निचला तबका है हिंदुस्तान का वो कांग्रेस की इन स्कीमों और जो कांग्रेस ने काम किए हैं वो नहीं भूला है और कांग्रेस के लिए उसकी हिमायत या हमदर्दियां अभी भी बरकरार होंगी?
देखिए आप जानते हैं कि आज की दुनिया में मीडिया, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इतना साइकेडेलिक इफेक्ट करता है और एक किस्म का माहौल पैदा कर देता है कि जिसमें बहुत वाजे तौर के ऊपर आपकी रीजनिंग को ख़त्म कर दिया है, खुद तक ख़त्म हो जाती है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक की ज़ुबान में, आजकल मीडिया की ज़ुबान में डंबिंग डाउन कहा जा रहा है। यानी इतना शोर जो प्रोपेगेंड हिटलर के वक्त से जो गोबेलियन प्रोपेगेंडे का तरीका यह है कि इतना झूठ बोलो कि झूठ सच नज़र आने लगे, और ये जो इस वक्त मीडिया में हो रहा है वो इसी पैमाने पर हो रहा है जिस पैमाने पर कभी हिटलर के लिए गोबेल्स ने किया था। और इस माहौल में बहुत डिस्पैशनेट तरीके से, ख़ासतौर से वो तबका जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली मैच्योर ना हो, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, उसके लिए सारी चीज़ों को सिफ्ट कर पाना और समझ पाना, अच्छी तरह से एनालाइज कर पाना जो मिडिल क्लास और दूसरे लोगों का काम होता है, उनको उनमें मुश्किल होता है। फिर हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा लोअर मिडिल क्लास भी पिछले 15-20 सालों में पैदा हुआ है, यूथ की वोटर का एक बहुत बड़ा तबका आया है जिसको वो इस मीडिया के कैंपेन के ज़रिए अपने कॉरपोरेट वर्ल्ड के पैसे के साथ के पैसे के बहाव में वो इस मीडिया के ज़रिए अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है जो मीडिया की डंपिंग डाउन है, हर जगह आपको हिंदुस्तान में मोदी दिखाई दे रहे हैं। हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त कह रहे थे अगर आप इस वक्त सड़कों पे निकलिए तो मोदी, घर में टेलीविज़न खोलिए तो मोदी, अपने बेडरूम में जाइए तो मोदी, मेट्रो ट्रेन के ऊपर सफ़र कीजिए तो मोदी। ये उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि अगर आप अपने टॉयलेट में जाइए तो वहाँ मोदी। यानी कोई ऐसी जगह नहीं बची है कि जहां पर मोदी आपको नज़र ना आ रहे हों। ऐसा कैंपेन, इतनी ज़बरदस्त पैसे की रेल पेल, जो मैं नहीं समझ में नहीं आता कि इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं दिखाई दे रही और इलेक्शन कमीशन इस मामले में कोई कदम क्यों नहीं उठा रहा। कभी कभी तो लगता है कि जैसे हर जगह इन्फिल्ट्रेशन हो, जैसे नाजीज के दौर में नाजियों का हो गया था। बहरहाल तो एक फैक्टर तो ये है कि जिसकी वजह से ये जो जिन लोगों के लिए इस तरह तरह की स्कीमें और अच्छे काम हुए वो डैजल्ड हैं बिल्कुल इससे, मीडिया के कैंपेन से। दूसरी बात, जो दूसरी कमज़ोरी, ख़ुद कांग्रेस की कमज़ोरी जो उभर के आई है वो ये आई है कि वो इस जो 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 ऑनस्लॉट था मीडिया का, कॉरपोरेट वर्ल्ड का, मिडिल क्लास का, उस ऑनस्लॉट के वो जो हमला पूरा था, जिसको कहा जाए एक हमला बोला गया था कांग्रेस के ऊपर, उससे खुद कांग्रेस की लीडरशिप भी घबराई हुई नज़र आई। उनके यहाँ भी थोड़ा कन्फ्यूजन था लीडरशिप के। एक तो एक वजह गालिबन ये भी थी कि उनके यहाँ ओल्ड गार्ड से यंग टर की तरफ वो जा रहे थे, यानी सोनिया गांधी आहिस्ता आहिस्ता कमान राहुल गांधी को देती चली जा रही थी। उससे जो उनके यहाँ का वो लोग जो पहले से ओल्ड गार्ड जिसको कहा जाता है, पहले से जिसकी कांग्रेस के ऊपर गिरफ्त थी, उसमें एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग हुई। यंग टर्क यानी नौजवान जो राहुल के साथ की टीम थी वो पूरी तरह से पार्टी में को अपनी गिरफ्त में कर नहीं पाई थी। तो ये जो वैक्यूम बना और ये जो एक ओल्ड गार्ड और कांग्रेस के ओल्ड गार्ड और यंग टर्क के बीच जो एक रस्साकशी पैदा हुई, उससे लीडरशिप जो थी वो अपने को तैयार नहीं कर सकी कांग्रेस की, कि वो जो 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 बीजेपी का चैलेंज है, बीजेपी का जो हमला है, मीडिया का जो डंपिंग डाउन है, उसको वो पूरी तरह से फेस कर सकती। इसकी वजह से वो जो आवाम तक खुद कहना चाहते थे, वो अपने मैसेज, उनका जो अपना मैसेज था, वो अपने मैसेज को आवाम तक बहुत वाजे तौर से, बहुत क्लैरिटी से, बहुत बहुत ताकत के साथ पहुंचाने में नाकाम हो रहे हैं। उससे भी नीचे आप जिसको कह रहे हैं कि वो तबके जैसे दलित है, बैकवर्ड्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, जिनके लिए काम किया गया कांग्रेस के दौर में, वो उन तक वो मैसेज नहीं पहुँच पा रहा और वो क्लैरिटी उनको नहीं हो पा रही, उनमें भी कन्फ्यूजन है। तो ये दो बहुत अहम वजहें हैं जिनकी वजह से कांग्रेस ने जो अच्छे काम किए, वो जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए वो काम किए, गरीब के लिए, आम आदमी के लिए जिसकी वो बात करती है, उन आम आदमी और उस गरीब में उसको वो अपने कामों को उस तरह से नहीं पहुंचा पा रही जिस शद्दोमत से उसको पहुंचाना चाहिए था, जबकि उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा और कैंपेन इतना ज़बरदस्त है कि जिसकी नज़ीर और मिसाल हिंदुस्तान के किसी चुनाव में इससे पहले न मिली थी और गालिबन अब मिलना मुश्किल।
जी बहुत शुक्रिया जनाब अंद्राबी साहब। अभी जैसा कि जफराग सफर में रहे थे कि कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन ज़बरदस्त, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अगर आपको याद हो तो 2004 में भी जब उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की, अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत यानी अपनी मुद्दत पूरी करी, तो उस वक्त भी मीडिया ने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो ज़ेर क़यादत हुकूमत थी उस वक्त एनडीए की, उसकी कारकर्दगी को एक तरह से पूरी तरह से उसको उछालने की कोशिश की थी। फिर 2009 में भी इसी तरीके से एग्जिट पोल या सर्वे जो रिपोर्टें थी मुसलसल जो है कांग्रेस के खिलाफ जारी थी, लेकिन 2004 में भी कांग्रेस ने जो है वो फतह हासिल की, और 2009 में भी अगरचे मीडिया ने मुख्तलिफ तरह के सर्वे, एग्जिट पोल वगैरह वगैरह सारी बातें की, तो क्या यही सूरत हाल इस बार भी तकरार नहीं हो सकती आपके ख्याल में?
नहीं, देखिए इस बार और कुछ हुआ है। एक तो ये कि मीडिया भी ग्रो हुआ है, यानी मीडिया की पहुंच ज़्यादा हुई है, जितनी उस वक्त नहीं थी, 2004 या 2009 में भी नहीं थी जितनी इस वक्त है। इस वक्त जो सोशल मीडिया और यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप हर चीज़ शामिल करें, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, आईफोन्स हैं, ये सारा कुछ इनके ज़रिए जो कम्युनिकेशन है, यानी बात जिस सूरत के साथ चली जाती है और जितनी दूर तक चली जाती है, उसमें फ़र्क आया है 2004 से भी और 2009 से भी। और मैं जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो हमारे इंडिया के गेस्ट्स हैं शायद ये भी मेरी इस बात पे गौर करें, शायद सबसे बड़ा फैक्टर जो है कांग्रेस का, सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त जो कांग्रेस एक मुश्किल सूरत हाल में दिखाई दे रही है, शायद उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस जो है वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाई है, वो उसके पास कोई वो ऐसी लीडरशिप नहीं है कि जो अपनी कारकर्दगी जो अपने आप को मुतारिफ करा सके लोगों में। देखिए ना, लोग जो हैं किसी, ये कोई स्कॉलरली कोई ऐसा डिबेट नहीं होता है कि किसने क्या किया, क्या स्कीम्स थी, क्या फायदा हुआ। इलेक्शन इन बातों पर नहीं होते, इलेक्शन तो परसेप्शन और इंप्रेशन की बुनियाद पे होते हैं। तो पहली बार ये कांग्रेस में ऐसा हुआ कि एक एक ऐसी लीडरशिप जो प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, उनके उनके बारे में हमेशा ये रहा कि वो कुछ कहते ही नहीं है। सुहाफी लोग कहते थे कि वो हमसे हर माह हमसे मिले, लेकिन वो नहीं मिलते थे, यानी वो कुछ कहते ही नहीं थे। उससे ये इम्प्रेशन स्ट्रांग हो रहा था जो बीजेपी कह रही थी कि भाई ये तो है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इसकी डोर कहीं और पे है, कहीं और से प्राइम मिनिस्टरी और इख्तियार जो है कहीं और हैं, और ये बस दिखाने को है। और अब देखिए इत्फाक से ये अभी जो किताब भी आ गई डॉक्टर संजय अबारू की, जो प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे मीडिया चीफ रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, अब उस किताब का भी देखना है कि वो इसी वक्त क्यों आ गई। तो उसने भी इस इम्प्रेशन को फर्दर स्ट्रेंथन किया है कि प्राइम मिनिस्टर तो है लेकिन इख्तियारात कहीं और है। तो ये चीज़ें जो है कांग्रेस के खिलाफ बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया कि प्राइम मिनिस्टर बा इख्तियार नहीं है, करप्शन है, और उधर से एक पावरफुल मोदी का जो जो एक एक लीडरशिप एक और एक मोदी फैक्टर, जैसा कि हमारे मेहमान फरमा रहे थे कि हर जगह मोदी की तस्वीर, तो उधर से जो मोदी को इम्पोज किया गया, यहाँ से उसका कोई जवाब ही नहीं था। हालांकि कांग्रेस ने ये बात सही की कि उसने इसको एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बनने नहीं दिया, यानी उनकी, वरना बीजेपी तो चाहती थी, और बीजेपी के वर्ल्ड व्यू में, बीजेपी के प्रोग्राम में यह है कि वो धीरे धीरे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल देंगे और यहाँ वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म लाएंगे। वो चाहते थे कि इस इलेक्शन को भी वो प्रेसिडेंशियल बनाएं, फर्द अगेंस्ट फर्द, लेकिन ऐसा ऐसा कांग्रेस ने नहीं माना। लेकिन ऐसा न मान कर भी जो है कांग्रेस जरा फेसलेस रहा, उसका कोई चेहरा कि जो एक आम आदमी देख सकता था, वो चेहरा नहीं था। प्रोग्राम थे और जो कुछ हुआ है वो तो एनालिसिस करने वालों का काम है, लेकिन आम लोगों तक ये तासुर जो है वो एक लीडरशिप के जरिए से पहुंचता, जो कि इस वक्त मेरी समझ के मुताबिक कांग्रेस जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकी। और उसी सिलसिले में मैं कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने जरा कुछ डेंट उस सिलसिले में किया, वरना पोजिशन इससे भी खराब थी, यानी बीजेपी की पोजिशन इससे भी मजबूत थी, इससे कि कांग्रेस की पोजिशन बहुत वीक थी। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की पोजिशन को जरा मुतासर किया, इससे कि वहां प्रोग्राम भी था, लीडरशिप भी थी।
जी बहुत शुक्रिया। सौरभ कुमार शाही साहब, जो इलेक्शन इस वक्त चल रहा है लोकसभा का, इसमें जो एक बात खुलकर सामने आई कि मीडिया जो आपकी बरादरी है सहाफत, उसने अपना वो न्यूट्रल रवैया या गैर जानबदाराना जो उसका किरदार है वो सही तरीके से अदा नहीं किया, बल्कि उसने जानबदारी का मुजाहरा किया। ये आप और अभी हमारे जो दीगर दो मेहमान वो सब ये कह रहे हैं, और जाहिर है कि ये आगे चलकर शायद मीडिया की सदाकत, उसकी सच्चाई और उसकी गैर जानबदारी पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दे। तो क्या खुद मीडिया का जो हलका है इस बारे में कुछ सोचने के लिए इस शोर हंगामे में तैयार नहीं? जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि 3 रोज कबल आपकी अदालत जो टीवी चैनल है जिसमें नरेंद्र मोदी आए थे, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो प्रोग्राम फिक्स था।
दो, 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 पहली पर मैं बात करूंगा। पहली बात जो मीडिया के फिक्स होने की है वो तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, और ये पहले भी होता है और इस बार कुछ ज्यादा बड़े लेवल पे, क्योंकि देखिए 6,000 करोड़ रुपए जहाँ पे इन्वॉल्व हो वहाँ पे मीडिया की क्या औकात रह जाती है, कितनी वो निष्पक्ष रह जाती है, ये तो फिर हमारे आपके बीच की बात रहेगी। लेकिन एक बहुत दूसरे लेवल पे सेल्फ सेंसरशिप भी हो रहा है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि ऐसे ज्यादा इंडियन मीडिया में सेल्फ सेंसरशिप भी है। सेल्फ सेंसरशिप क्या है? हमारी इंडियन मीडिया जो है वो आप कुछ भी कह लें, लेकिन ये डोमिनेट करते हैं नॉर्थ इंडियन अपर कास्ट की कास्ट जो है, इनसे जो लोग बिलोंग करते हैं वही इसको डोमिनेट करते हैं। तो ये वो कास्ट है जिनका माइंडसेट भी प्रो बीजेपी के अनुसार है। तो अगर आप इनको पैसा दें या ना दें, ये ऐसे भी प्रो बीजेपी रहेंगे। तो मैं हमसे ये स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि देखिए पैसा तो रोल है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल इसका भी है कि मीडिया में जो डोमिनेंट ग्रुप है वो ग्रुप है जिसकी वर्ल्ड व्यू, जिसकी इंडिया व्यू, जिसकी पॉलिसी व्यू वो बीजेपी से मेल खाती है। नहीं है जो ये कह सके कि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो उसको रिजॉल्व किया गया। जैसे मैं आपको दो एग्जांपल देता चलूँ, रजत शर्मा एबीवीपी जो कि आरएसएस की यूथ विंग है आपको पता है, और जो कि एक तरीके समझ लें कि जिसके सारे मेंबर फिर बीजेपी के यूथ विंग के मेंबर हो जाते हैं, एबीवीपी के टिकट पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन उन्होंने आज से कई साल कब लड़ा था, जिस जमाने में अरुण जेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बने, रजत शर्मा उसी टिकट पे जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए लड़े थे, हार गए। लेकिन तो आप बताएं वो आदमी जो वापस इंटरव्यू लेता है तो यहाँ क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? एक चीज चले दूसरी तरफ देखें, मैं आज एनडीटीवी के सर्वे आई है जो कि सपोज न्यू इंडिया की सबसे लिबरल न्यूज चैनल मानी जाती है, तो एजेंसी ने एनडीटीवी के लिए सर्वे किया, उस एजेंसी का नाम है हम
जी। जफर आगा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इलाकाई जमातें जो हैं, जैसा कि जो सबसे बड़ी रियासत है सीटों के एतबार से उत्तर प्रदेश, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो अपनी जगह पर ही हैं, लेकिन वहाँ पर जो मजबूत दो बड़ी जमातें हैं इलाकाई सतह पर, यानी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, या इसी तरीके से आप बिहार में चले जाएँ तो वहाँ राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू, इसी तरीके से आप जुनूब में चले जाएँ आंध्र प्रदेश में वहाँ तेलुगु देशम पार्टी, तो इस तरह की जो इलाकाई और रियासती जमातें हैं, क्या उनकी ताकत को इतनी आसानी से इस मीडिया के हंगामे में फरामोश किया जा सकता है? और जब सब मोदी 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 की लहर कर रहे हैं तो क्या सपा, जिसको समाजवादी पार्टी कहते हैं या बहुजन समाज पार्टी कहते हैं या जनता दल यूनाइटेड कहते हैं या तेलुगु देशम पार्टी कहते हैं, इनकी हकीकतों को फरामोश किया जा सकता है?
बहुत अहम सवाल है, बड़ा इसके ऊपर बड़ा डिबेट होना चाहिए था, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं और ये भी मीडिया की पूरी ऑर्गेनाइज साजिश है, क्योंकि मीडिया जिन लोगों के हाथों में जा चुका है वो साजिश वहाँ रची जा रही है, मीडिया उनको प्ले अप कर रहा है। एक दिस इज जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस है रीजनल पार्टीज के ताल्लुक से, इलाकाई पार्टियों के ताल्लुक से, मीडिया में कम अज कम। बीजेपी का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर आप उसका स्प्रेड देखें तो शुमाली हिंदुस्तान, नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न हिंदुस्तान के बाहर ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। मसलन मशरक़ी हिंदुस्तान में, ईस्टर्न इंडिया में, बंगाल, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, इसमें बीजेपी को 4 सीटें भी मिलना मुमकिन नहीं लगता। इसी तरह साउथ इंडिया यानी जनूब में, शुमाल में चले जाएँ आप, नॉर्थ साउथ इंडिया में, केरल, कर्नाटक में किसी हद तक, इसके अलावा आंध्र प्रदेश जहां चंद्रबाबू नायडू के साथ इन्होंने ये उम्मीद में हैं कि कुछ जीत जाए, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वहां तकरीबन नहीं के बराबर है, वहां आप चंद्रबाबू नायडू भी डूब रहे हैं सुन रहे हैं और बीजेपी भी डूब रही है, इसमें कहीं बीजेपी का रोल नहीं, लेकिन कहीं ये जिक्र ही नहीं हो रहा है, कहीं ये बात ही नहीं हो रही है। यूपी जहाँ 20-25 बरस से मुलायम सिंह और मायावती के अलावा किसी के पास इख्तदार नहीं आ पाया है, इतनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत, सबसे जो सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजती है हिंदुस्तान में, 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बारे में कोई डिबेट नहीं। बिहार जहाँ लालू प्रसाद यादव और फिर बाद में नीतीश कुमार के हाथों में इख्तदार रहा, 20-25 बरस होने को आ रहे हैं, वहाँ कहीं जिक्र नहीं है। और इसी तरह जैसे आपने कहा कि बंगाल में या तो कम्युनिस्ट हैं या ममता बनर्जी, बल्कि अब ये कहा जाए कि ममता बनर्जी ज़्यादा बड़ी फोर्स हैं
जी। तो मैं इसी सवाल को आगे की तरफ ले जाऊंगा अंद्राबी साहब की खिदमत में। अंद्राबी साहब, तो क्या बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में या समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के मुकाबले इतनी कमज़ोर हो गई यूपी में कि उसका नाम तक नहीं ले जाए? या मसलन आप बंगाल में देख लें कि 30-40 साल तक हुकूमत की है कम्युनिस्ट पार्टी ने रियासती सतह पर, और ज़ाहिर है कम्युनिस्ट सबसे ज़्यादा मजबूत या तो बंगाल में रहें या केरल में रहें, तो ये पार्टियाँ क्या मिलकर तीसरा महाज नहीं बना सकती?
जी मैं आपकी बात का आखिरी हिस्सा नहीं सुन सका।
मैंने कहा कि क्या ये जो पार्टियां इलाकाई पार्टियां ये मिलकर तीसरे महाज के तौर पर आगे नहीं आ सकती हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मुकाबले में?
जी तीसरे महाज की तो वहाँ पर काफ़ी वक्त से बात हो रही है और मुमकिन है इलेक्शन के बाद कोई तीसरा महाज आए भी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हम मीडिया की बात कर रहे हैं ये सही है, मीडिया एक तासुर एक फिजा तो पैदा करता है लेकिन उसका रोल बहरहाल हमें समझना चाहिए कि एक ख़ास हद तक है, और पर्टिकुलरली इंडिया जैसी सोसाइटी में जहाँ पर इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इंडिया गांव गांव में रहता है यानी रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और वो रूरल पॉपुलेशन वगैरह जो है उस पर मीडिया का उतना उस पर उनकी गिरफ्त उतनी नहीं है, हमें उन मुस्तकिल अवामिल पर भी अपनी नज़र रखनी चाहिए। जैसे आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया तो कास्ट फैक्टर जो है ये एक मुस्तकिल चीज़ है, इसको कोई मीडिया नहीं बना सकता, कोई मीडिया नहीं, कोई कोई चीज नहीं, बहुत ही मुस्तकिल और पायदार हकीकत है ये इंडिया की कास्ट का मामला। तो बहुजन समाज पार्टी ने वहां कास्ट के मसले को जिस तरह हैंडल किया है और खुद इस पर हुक्मरानी की है तो उनका वो सारी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बरकरार है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसी तरह समाजवादी पार्टी जो है एक मुस्लिम दोस्त पार्टी के तौर पर उभरी है, हालांकि मुजफ्फरनगर में जो रॉयट्स वगैरह हुए उससे उनकी इमेज को काफी धचका लगा, लेकिन फिर भी अक्सर मुसलमानों की हमदर्दियां उनके अब भी उनके साथ हैं, तो लिहाजा उनकी भी अपनी एक प्रेजेंस है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको कोई उसको उसको डेंट करना यानी ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह वेस्ट बंगाल में या आप जुनूब में जाएं, जुनूब में तो बहरहाल रियलिटी ही अलग है, वहाँ ये बीजेपी वगैरह की वेव नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहाँ पे बीजेपी ने काफ़ी जोर लगाया और अब नरेंद्र मोदी का खास आदमी जो है जो गुजराती है यूपी का नहीं है वो अमित शाह, उसको भेजा गया उत्तर प्रदेश में पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और उसको भेजने के बाद ही मुजफ्फरनगर के फसादात भी हुए। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मीडिया जो है एक ख़ास हद तक ही असरअंदाज हो सकता है, लेकिन इंडिया के जो इसके बगैर परमानेंट अवामिल हैं जिसमें जिन खतों की आप जिक्र कर रहे हैं उत्तर प्रदेश वगैरह उनमें कास्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जो आइडेंटिटी कास्ट आइडेंटिटी वाली पार्टीज जो है समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको कोई मुतासर नहीं कर सकता।
जी जनाब डॉक्टर इनायतुल्लाह अंद्राबी साहब, जफर आगा साहब और सौरभ कुमार शाही साहब, हम आप तीनों मोज़ज़ मेहमानों के शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें इनायत के। नाज़रीन हिंदुस्तान में लोकसभा के इंतखाबात या आम इंतखाबात के मुख्तलिफ मराहिल जारी हैं, आखिरी पोलिंग या वोटिंग जो है वो 12 मई को होगी और 16 मई को काउंटिंग या गिनती होगी, नतज का ऐलान होगा। जब तक हम आपकी खिदमत में मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश करते रहेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो ये कि हिंदुस्तान जैसा कि हमारे मेहमानों ने कहा कि मुख्तलिफ कौमियतों का मुल्क है, मुख्तलिफ नज़रियात के लोग हैं, मुख्तलिफ सतह या तबकात के लोग हैं, गरीब शेड्यूल कास्ट और अमीर और मिडिल क्लास, तो जाहिर है कि हर एक की अपनी अपनी तरजीहात होती हैं और इलाकाई जमातों को किसी भी सूरत में फरामोश नहीं किया जा सकता। तो ये कहना कि फौरी तौर पर कि मीडिया इस वक्त किस की तरफ हावी है और किस की तरफ उसका झुकाव है और उसी की वजह से कौन सी पार्टी जीत सकती है या हार सकती है, तो शायद क़बल अज़ वक्त होगा। बहरहाल हमें और आपको आने वाले वक्त का इंतज़ार करना होगा, और तकदीर का फ़ैसला तो बहुत सी जगहों पर बैलेट बॉक्सों में बंद हो चुका है और बहुत सी जगहों पर 12 मई के बाद सामने आएगा, यानी 16 मई को इसका ऐलान होगा कि कौन जीता और कौन हारा। लेकिन बहरहाल सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प है, जिस पर हम मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आपसे जिक्र और गुफ्तगू करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली बासी जी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।